राज की मुनि संघ की सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले शुभ भावनाए फूल पले घर घर में मंगल दीप जले सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले हो प्रभु कृपा से ही मांग लगे हो प्रभु कृपा से ही मांग लगे अहंकार क्रोध सब दूर भगे अहंकार क्रोध सब दूर भगे हो प्रभु कृपा से ही मांग लगे अहंकार क्रोध सब दूर भगे जीवन में संयम पूर्ण तेरे घर घर में मंगल दीप जले सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले पर दुख में करुणा की धार बहे पर दुख में करुणा की धार बहे अपने दुख को चुपचाप सहे अपने दुख को चुपचाप सहे सब संकट अपने आप टले घर घर में मंगल दीप जले सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले इस जग में चैन की बांसुरी बजे इस जग में चैन की बांसुरी बजे जीवन सर्व मणियों से सजे जीवन सर्व मणियों से सजे इस जग में चैन की बांसुरी बजे जीवन सर्व मणियों से सजे बजे उस क्षण करुणा धार बहे घर घर में मंगल दीप जले सुख शांति की पुरवैया चले घर घर में मंगल दीप जले मंगल हो कल्याण हो इस जग के सब जीव सुखी हो
ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोली विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 भक्ति सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बड़ी उम्मीद आशा और भावना के साथ शिवपुरी समाज से पधारे हुए हम सभी बंधुओं ने मुंदास श्री के चरणों में चातुर्मास स्थापना की भावना को लेकर मुनिराज के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया है। आज यहां पर इतनी उपस्थिति है, कोई बात नहीं, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी नगर में कोई भी संत पहुंच जाए वहां पर ऐसे ही उत्सव ऐसे ही त्योहार से नजर आते हैं। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं इस अवसर पर, मैं कह रहा हूं, आप सभी निश्चित रूप से बाद में जयकारा लगाइए जब मैं आपसे जयकारा के लिए कहूं कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आएंगे और चले जाएंगे, होली दिवाली दशहरा तो आएंगे और चले जाएंगे, मगर जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। आज यहां पर वैसा ही उत्सव वैसा ही त्योहार का माहौल है और शिवपुरी समाज इसी पुनीत भावना के साथ आई है यहां पर कि ऐसा ही माहौल ऐसी ही धर्म वृद्धि वहां पर भी हो, क्योंकि आज तक शिवपुरी के इतिहास में आचार्य श्री के संघ के किसी भी साधु का चातुर्मास वहां नहीं हो पाया है। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। हालांकि चातुर्मास होते रहते हैं, लेकिन एक भावना होती है, एक इच्छा होती है, एक मन में कामना होती है कि किसी ऐसे संत का चातुर्मास हमारे शिवपुरी नगर में हो जिससे जन जन को लाभ पहुंचे और उस संत को जिसे हम सब संत शिरोमणि के नाम से जानते हैं उनके सम्मान में उनके आदर में मैं आप सभी से जोर से जयकारा चाहूंगा और जितनी जोर होगी उतनी भावना हमारी महाराज श्री के चरणों में चातुर्मास हेतु प्रबल होगी। आप सभी का सहयोग। जय बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की।
विराजमान है परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मैं अधिक क्या कहूं, अमृत रूपी जिनवाणी की भरी हृदय में दागर और प्रवचन द्वारा पिला रहे हैं, धन्य हो क्षमा सागर, धन्य हो क्षमा सागर। ऐसी परम पुनीत मुनि श्री के चरणों में सत सत अभिवंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी आत्म तत्व निरूपक वाणी से हमें उपकृत करें पूज्य मुनि श्री।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि महान् जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाए।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी ये मानकर बैठे हैं कि जीवन जो निरंतर बीतता जा रहा है उसे कैसे संभाला जाए, उसे कैसे अच्छा बनाया जाए। अपनी जो स्वाभाविक निर्मलता है उसे कैसे हासिल किया जाए। हम लोगों के साथ एक मुश्किल ये है कि जैसे आंख ना हो और अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्षमा किया जा सकता है कि क्या करें, आंख ही नहीं है, रोशनी ही नहीं है, नहीं दिखा। लेकिन किसी के पास आंख हो और अंधेरा हो तब भी उसे क्षमा किया जा सकता है कि आंख तो ठीक थी पर अंधेरा था इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जिसके पास आंख हो और रोशनी भी हो और उसे दिखाई नहीं पड़े तो क्या समझा जाए। इसे हम मजबूरी या नियति तो नहीं कह सकते, इसे सब तो हम अपनी कमजोरी ही कहेंगे, अपनी पुरुषार्थहीनता ही कहेंगे। हम सबके साथ भी यही मुश्किल है। हमारे पास देखने की आंख भी है, हमारे पास सच्चे देवगुरु शास्त्र से मिली रोशनी भी है, इसके बावजूद भी अपने जीवन को मुझे कैसा बनाना है, मुझे अपने जीवन को कैसे परिष्कृत करना है, यदि ये हमको नहीं सूझता है तो कोई हमें क्षमा नहीं करेगा, ना क्षमा करने लायक हम हैं। क्योंकि हमारे पास आंख है फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं, रोशनी के साधन हैं फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हम लोगों की ये स्थिति है, हमें इस पे विचार करना चाहिए और अपनी जो आंख मिली है हमें, जो रोशनी मिली है सच्चे देवगुरु शास्त्र की, उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए समय रहते हुए। बहुत पहले एक रास्ते से एक जमींदार गुजरता था और शाम होने को थी, वो घर वापस लौट रहा था। अचानक उसने एक घर के बाहर चबूतरे पर एक वृद्ध बाबा को बैठे देखा और इतना ही नहीं, उस वृद्ध बाबा के पास एक छोटी सी बिटिया खड़ी है और जो उन्हें झंझकोर कर कह रही है कि बाबा उठो, देखो अंधेरा हो गया, अभी तक आपने दीप नहीं जलाया, मुझे कहो तो मैं जला दूं। इतनी ही बात तो कही थी और बहुत सहज रूप से कही थी कि बाबा उठो, अंधेरा हो गया, रोज तो तुम दीप जला लेते थे, अभी तक दीप नहीं जलाया, कहो तो मैं जला देती। और जमींदार इतनी बात सुनकर, भैया पता नहीं कौन सी बात सुनकर किसके जीवन में दृष्टि बदल जावे, और दृष्टि क्या बदल जावे, पूरा जीवन ही बदल जावे। कहते हैं कि जमींदार घर पहुंचा और सबसे क्षमा याचना करता है और कहता है कि बस ये आखिरी रात है, कल सुबह मैं गृह त्याग करके अपने आत्म कल्याण के लिए निकल जाऊंगा। लोग चकित हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ आखिर, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कोई मर्मभेदी चोट पहुंचा दी क्या? वो कहता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तब फिर ऐसा मन कैसे बन गया? उसने कहा एक घटना अभी अभी देख के आ रहा हूं, मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे ही कहा गया हो। वो एक छोटी सी बिटी अपने बाबा से कह रही थी कि बाबा अंधेरा घिर गया, तुम अंधेरे में बैठे हो, दीप तो जला दिया होता, रोशनी तो कर ली होती, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन भी ऐसे ही अंधेरे में गुजर गया, मैंने अभी तक कोई दीप अपने जीवन में क्यों नहीं जलाया, और इससे पहले कि मेरा जीवन पूरा समाप्त हो, मैं एक दीप जो मेरे जीवन को उज्जवल कर सके, मेरे जीवन को निर्मल कर सके, मेरे जीवन को पवित्र कर सके, वो जलाना चाहता हूं। इसलिए अब मैं इन मलिनताओं को छोड़ करके अपने निर्मलता की तरफ जाने का पुरुषार्थ करना शुरू करूंगा कल सुबह से। हम सब लोगों के जीवन में ऐसे जाने कितने अवसर आते हैं, ऐसी जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम किसी निर्णय पर अपने जीवन के नहीं पहुंच पाते हैं कि टू एनफ, बहुत हुआ। इन मलिनताओं के चलते मेरा जीवन क्या ऐसे ही बीत जाएगा? मुझे अब अपनी उस स्वाभाविक निर्मल अवस्था की तरफ कोई ना कोई प्रयास तो करना चाहिए। हम सबको एक बार ये संकल्प तो करना ही पड़ेगा, और बहुत सरल हृदय से करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना सजग, जितना सरल और जितना संवेदनशील होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल और अपने उस परम विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये तीन ही चीजें हैं। पहली चील है सजगता। हम सब लोग सजग हैं, वैसे देखा जाए तो कोई हमारा बिगाड़ ना कर दे, कोई हमारे घर में चोरी ना करने घुस जाए, कोई हमारा और कोई उपद्रव ना कर दे, हम इस सब मामले में बहुत सजग हैं। मेरे शरीर में कोई व्याधि ना हो जाए, कोई रोग शोक ना हो जाए, इसके प्रति हम बहुत सजग हैं। लेकिन मेरी चेतना निरंतर मलिन होती चली जा रही है, इसके लिए मैं जरा भी सजग नहीं हूं। मेरा शरीर जरा सा मलिन होता है, मेरे वस्त्र जरा से मलिन होते हैं, मेरे घर की दीवार जरा गंदी होती है, तो मैं उसमें व्हाइट वॉश करवाता हूं और ड्राई क्लीनर के पास अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूं और देखता हूं कि कौन सी साबुन निकली है जिससे कि मैं नहा करके अपने शरीर को बहुत अच्छा बना सकूं। मैं इस मामले में बहुत सजग हूं। शरीर की मलिनता, वस्त्र की मलिनता और घर गंदा ना हो जाए, इसकी चिंता बहुत है, लेकिन उसमें रहने वाला जो निरंतर मलिन होता है अपनी ही कषायों से, उसकी खबर किसी को नहीं है। बात बाद को वे संत हो गए थे, पर जब तक गृहस्थ में थे तो अच्छे से गृहस्थी चलाते थे, दुकान चलाते थे। ईमानदारी थी सो दुकान पर बहुत भीड़ होती थी। ऐसे ही एक दिन पानी गिर रहा था, दुकान पर बहुत भीड़ थी, एक साधु जी उनकी दुकान पर आकर के खड़े हो गए। नहीं देख पाए वे गृहस्थ कि साधु जी आकर के खड़े हो गए हैं, वे अपनी दुकान में ग्राहकों में व्यस्त थे। और जब थोड़े से ग्राहक कमती हुए तब अचानक हिसाब किताब के बीच उनका ध्यान चला गया कि अरे बाबा जी आप भी खड़े हैं, कितनी देर हो गई आपको, क्षमा करना मैं देख नहीं पाया। बाबा जी बहुत पहुंचे थे, उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि भाई मुझे तो घंटे आधे घंटे हुआ है, वो जो परमात्मा तेरे द्वार पर रोज आके खड़ा होता है उसकी खबर कब लेगा तू। बस इतनी सी बात उन गृहस्थ को और पर्याप्त थी। कहते हैं बाद को वो अपनी गृहस्थी छोड़कर बहुत बड़े साधक हो गए थे, बहुत बड़े संत हो गए थे। हम थोड़े से सजग हों, मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, कितने तो अवसर आते हैं, कितने तो लोग हमारे आसपास से गुजरते हैं हमें जगाने के लिए, लेकिन हम अगर ना जागना चाहें तो कोई हमें जगा कैसे सकता है। सूरज भी आकर के और हमें रोज जागने का संदेश देता है, साधु जन आकर के गुजर कर हमें जागने का संदेश देते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं तो वे भी जरा इशारा करते हैं कि क्या कर रहे हो, रोज सिर्फ दर्शन को ही आते रहोगे या कुछ करोगे। जब जब जिनवाणी मां का स्वाध्याय करते हैं तो वो भी तो हमें इशारा करती है कि क्या करते हो, सोए रहोगे क्या। ये सब हमें सजग होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम सजग नहीं हो पा रहे हैं। भैया अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो अपने उत्थान के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने पतन के प्रति भी सजग होना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर में मैं बुरा ज्यादा हो जाऊं और भला कमती हो पाऊं। इतना ध्यान मुझे रख लेना है, इतनी सजगता बनी रहे कि मैं रोज रोज पहले से ज्यादा भला होता चला जाऊं। ठीक है मैं अनादि काल से इन बुराइयों को अपने भीतर इकट्ठा करता जा रहा हूं, सो अब मुझे ऐसा नहीं है कि अनादि काल से चूंकि मैंने इन बुराइयों को संचित किया है तो मुझे उनको निकालने में भी अनंत काल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहूं तो अनादि काल के संचित इस अंधेरे को जरा सी रोशनी जलाकर और गायब कर सकता हूं। बस ये सजगता हमारे भीतर आ जाओ। और दूसरी चीज है, कोई भी तब तक निर्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सरल ना हो। सरलता के मायने क्या है, हम कहते तो हैं कि हमें सरल होना चाहिए, पर सरलता के मायने हैं ईमानदार होना, टू ऑनेस्ट। सरलता के मायने हैं स्पष्ट ग्राही होना, स्पष्टवादी होना, स्ट्रेटनेस। सरलता के मायने हैं उन्मुक्त हृदय होना, ओपन हार्ट होना, ट्रांसपेरेंट होना। और सरलता के मायने हैं जीवन दिखावे से रहित सीधा साधा होना, बहुत इनोसेंट होना। क्या हम इनमें से कोई गुण अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं? ईमानदार होने में बड़ा डर लगता है, लोग ठग ना लें, क्योंकि देखने में यही आता है कि जो जितना ईमानदार होता है उसे लोग ठग लेते हैं। बेईमान अपनी बेईमानी करके और साफ निकल जाता है, और ईमानदार अपनी ईमानदारी की वजह से फंस जाता है। तो क्या करें? कबीर दास तो कहते हैं कि आप ठगियां सुख उपजे पर ठगियां दुख होए। आप ठगे जाओ कोई चिंता की बात नहीं है, पर कोई दुख नहीं मिलने वाला है। स्वयं ठगे जाने से थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन दूसरे को ठगोगे तो कई कई जिंदगियां दुख पाओगे। इसलिए अगर ईमानदार हो गए हो और लोग ठग भी लें तो घबराना नहीं, ईमानदारी छोड़ नहीं देना। ईमानदारी और भौतिकता दोनों एक साथ नहीं मिलती। अगर आपको आत्म संतोष चाहिए है तो भौतिक रूप से संपन्न आप नहीं हो सकते, दो में से एक चुनना पड़ेगा। अगर आप भौतिक समृद्धि चाहते हैं तो कृपा करके बेईमानी चुनिएगा, छोड़ दीजिएगा ईमानदारी। और अगर आपने ईमानदारी चुनी है तो भौतिक सुख सुविधाएं जिनके पास है उनसे ईर्ष्या करना छोड़ दीजिएगा, अपनी ईमानदारी पर भरोसा करिएगा, अपनी ईमानदारी का संतोष पाइएगा। लेकिन ऐसा कहां हो पाता है? दृष्टि की निर्मलता हो तो ये सब चीजें बहुत आसान मालूम पड़ती हैं, वरना ये सब चीजें आम आदमी के बूते की नहीं है। एक पेड़ पर एक आदमी शेर के डर से जाके बैठ गया था। कल रात मेरे से लोग कह रहे थे कि कल इतना पानी बरसे और मैं बैठे बैठे बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रहा हूं। मैं, आप देख रहे हैं मुझे? लेकिन मैं सब देख रहा हूं। पर लोग, कुछ लोग बड़ा बड़े भीतर ही भीतर उनको बड़ा मजा आ रहा होगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, आप नहीं निकल सकते। जो किसी के कहने से नहीं जाता, किसी के कहने से नहीं आता, उसे ना कोई भेज सकता है ना कोई बुला सकता है। भैया, थोड़ी सी असुविधा तो हो रही है, पर थोड़ा सा बाहर से भी भीग लो, भीतर से भीग पाए नहीं भीग पाए, बाहर से कम भीग ही लो। कभी फिर अवसर आएगा तो फिर अपन इस बात की तैयारी ही कर लें बाहर से भीग करके, कि कभी अवसर आए और हम अपने परिणामों को भी ऐसा ही गीला कर लें। परिणामों का गीलापन ही तो सरलता है, परिणामों का भीगापन ही तो सरलता है। शेर के डर से बैठा था वो आदमी पेड़ पर चढ़ करके, और एक रीछ भी आया, नहीं बंदर भी आया एक, और वो बंदर उस पेड़ पर बैठा हुआ है। इतने में आदमी को नींद आने लगती है तो बंदर से कहता है कि मैं थोड़ा नींद ले लूं। वो बंदर कहता है कि ले लो नींद, डरो मत, मैं हूं, शेर कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम, मैं जब तक बैठा हूं। जब वो आदमी नींद लेने लगा तो शेर ने धीरे से बंदर से कहा कि सुन, ये तो सो ही रहा है, जरा सा धक्का दे दे तो ये नीचे गिर जाएगा, इसको खाके मैं चले जाऊंगा, तू बच जाएगा। बंदर ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, वो मेरी शरण में आया है, मेरी ईमानदारी है कि मैं उसको ठगूंगा नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में आदमी की नींद खुल जाती है, कोई दुर्घटना नहीं घटती और अब बारी थी बंदर के सोने की। बंदर ने कहा कि मैं थोड़ा सो लूं, तुम थोड़ा देखते रहना। और जैसे ही बंदर सोया तो शेर ने फिर आवाज दी कि हे आदमी भाई, धक्का दे दो इसको, नीचे गिर जाएगा, मैं इसको खा के चले जाऊंगा, तुम बच जाओगे। मैं उस व्यक्ति को आदमी तो कह रहा हूं, लेकिन मैं उसे आदमी मान नहीं रहा हूं। और उस आदमी ने शेर की बातों में आकर बंदर को जैसे ही धक्का देना चाहा, बंदर की नींद खुल गई। दोनों से कहा आपकी बार शेर ने कि देखा बंदर, आदमी का स्वभाव, वो तुझे पटकने वाला था, अब भी तेरे पास ताकत है, तू इसको पटक दे नीचे, अब तो तेरे साथ इसने धोखा किया है। तो मालूम उसने क्या कहा कि मैं आदमी नहीं हूं। इतना बड़ा आदमी के ऊपर, उसकी अपनी ठगी के ऊपर, उसकी अपनी बेईमानी के ऊपर, इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता। हम सब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हम भी मौका आने पर चाहे जिसको चीट करते हैं। कहां खो जाती हमारी लीनियंसी, कहां खो जाती हमारी सरलता, कहां खो जाती हमारी ऑनेस्टी। हम बात तो करते हैं ईमानदार होने की, लेकिन हमारे भीतर उस ईमानदारी को हम खुद देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं? जब तक हम इन चीजों को अपने भीतर अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन निर्मल नहीं होगा भैया। ओपन हार्टेड होना, ओपन हार्टेड होने के मायने क्या है? उन्मुक्त हृदयता होना, जैसे कि बच्चों के भीतर होती है वैसी ही। गांठ नहीं बांधते हैं वे, दो मिनट पहले इतने जोर से लड़ते हैं कि शायद हो सकता है कि वर्षों नहीं बोलेंगे, देखने वाले को लगता है, पर अगले दो मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले चले जाते। लड़े भी तो पूरे मन से लड़े, और जब प्यार किया तो फिर पूरे मन से, भूल गए सब, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा भी कर दिया और भूल भी गए। हम तो पहले बार क्षमा ही नहीं कर पाते, और क्षमा कर दी तो इस बात को भूल नहीं पाते। हम कहते हैं कि याद है तुम्हें, हमने तुम्हें क्षमा किया था और तुमने फलानी गलती की थी। ओपन हार्टेड के मायने हैं, मैं अपने मन में कषायों की ग्रंथि नहीं बांध के रखता हूं, मैं अपनी ट्रांसपेरेंसी को, मैं अपनी पारदर्शिता को बनाए रखता हूं, मैं अपने बाहर भीतर एक सार रहता हूं। मन में क्रोध आया, क्रोध कर लिया, मन में प्रेम उमड़ा, प्रेम से बोल लिया, लेकिन गांठ नहीं बांधी। कौन है जो ये कह सके कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूं? आती है, सबको आती है, लेकिन उसका अचार डालना, उसका मुरब्बा बना के रखना, ये किसने कहा? कर ली गुस्सा, कर ली, आया था क्रोध का उदय, आया था, मैं चूक गया, लेकिन अब उस क्रोध के उदय को कंटिन्यूटी देना है या नहीं देना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुझे उस क्रोध को संजो के रखना है या कि वहीं के वहीं समाप्त कर देना है, ये मेरे अपने ऊपर निर्भर कर। अगर जीवन को निर्मल बनाना है तो अगर मलिनताएं थोड़ी देर को घेर भी लें, तो इतने उन्मुक्त हृदय हम हों कि उन मलिनताओं को तुरंत वॉश आउट करके और अपने उस निर्मलता को पुनः अपने जीवन में सजो लें। जैसे कि सागर की विशेषता होती है, कितना भी कचरा उसके भीतर डाल दिया जाए, लेकिन विद इन मूवमेंट वो सारे कचरे को किनारे पे फेंक देता है और फिर से वैसा ही पवित्र होकर लहराने लगता है। भैया, हम सबको भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। मलिनताएं 24 घंटे हमें घेरती हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय करें कि वे हमारे भीतर ज्यादा देर संचित ना रहें, हम उन्हें हटा सकें, झट से हटा सकें। और तीसरी बात, हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमारी अपनी स्ट्रेटनेस, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, इतना आसान नहीं है जितना लिखने वाले ने लिख दिया है। रास्ते में चलते मन में तो ये आता है कि इसके पॉकेट में हाथ डाल के निकाल ले, मैं मन में तो ये भी आता है कि इसको पीछे से कान पकड़ करके और एक तमाचा लगा दे मैं। तो लिखा तो यही है कि मन में हो सो वचन उचरिए, कह दो कि तमाचा मार भी को मन हो रहो, और जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल भी को, और वचन हो सो तन सो करियो, और कह के बात शुरू हो जाओ। ऐसे नहीं चल, ये नहीं कहलाता है स्ट्रेटनेस, स्पष्टता ये नहीं कहलाती है। इसके मायने सीधा सीधा नहीं है, इसके मायने ये है कि वो चीजें मन में भी नहीं लाना जो तुम्हें वचन से कहने में शर्म आए, और वो चीजें वचन से भी नहीं कहना जिनको करने में शर्म आए। इतना हृदय निर्मल हो, इतना हृदय सादा हो, सरल, तब उस व्यक्ति के वाणी और शरीर में वो ही सब कुछ होता है जो उसके मन में होता है। मन को इतना निर्मल बना लें कि फिर हमें बोलने में, जैसे कि बच्चे होते हैं, मन निर्मल होता है। और अभी अभी कपड़े पहनाए थे और कह दिया था कि बाहर मैं नहीं घूमना, गंदे मत करना, और क्या करते हैं, चले जाते हैं बाहर। अब आज के बच्चों से तो मेरा उतना ज्यादा परिचय नहीं है, हां संभव है वो ऐसा ना करते हो, लेकिन अगर वे बच्चे हैं तो जरूर करते होंगे, बाहर जरूर जाएंगे, मां के हटकने पर भी जाएंगे और गंदे करके आएंगे, और गंदे करके आएंगे तो यहां वहां छुपेंगे नहीं, सीधे आके मां के पास खड़े हो जाएंगे, जे हो गए गंदे। अब अब्बई आ रहा हो कोई मेहमान, और वो देखे कि जी मैले कपड़ा पहरे, सु बदलने हो सु बदल दो, न बदलने हो तो ऐसे ही घूम रहे, हमें कहा मैले के मैले। ये है स्ट्रेटनेस। क्या इस तरह हम हो पाते हैं? कभी किसी से कड़ी बात कह देते हैं तो उसके पास जाके और सहज रूप से कह सकते हैं कि मैंने जो आपसे कड़ी बात कही थी, मेरी भावना वैसी नहीं थी, पर फिर भी चोट पहुंची हो तो क्षमा कर देना। यह है स्ट्रेटनेस। सुबेरे झूठ बोली थी, शाम होते ना होते जाकर के हाथ जोड़ सकते हैं कि वो जो सुबह कहा था वो झूठ कहा था। यह है स्ट्रेटनेस। तुरंत के तुरंत क्या हम ऐसा कर, हम तो बहुत सोच सोच के करते हैं, हिसाब से करते, नहीं तो ऐसे में तो सब चौपटे ही हो जाएगा, महाराज आपकी बात मानेंगे तो हाँ चलेगा ही नहीं काम, एक दिन नहीं चलेगा, तो फिर चलाओ भैया संसार ही चलाओ, काय को हमें बेकार में उत्ते भगत आए परेशान भाई हमसे चार बातें सुन भी नहीं। ऐसे तो जिंदगी निकल गई कि नहीं चलेगा, चलता है, चलाने वाले का चलता है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या इसी तरह हम अपने जीवन को बहुत बड़ी बड़ी पोथियां खोल करके और बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्र पढ़ करके भी कोई वो चीज नहीं सीख सकता जो एक छोटे से बच्चे की इस छोटी सी आदत से सीख सकता है कि उसके भीतर जैसा है वैसा बाहर प्रकट करने में उसे या तो शर्म नहीं आती है, और फिर आती है तो फिर वैसा क्यों करते हैं जिसमें कि शर्म आती है। देखो तो झूठ बोलते समय शर्म आनी चाहिए थी, ग्लानी होनी चाहिए थी, उस समय न शर्म आती है न ग्लानी, लेकिन झूठ जब प्रकट हो जाता है तो शर्म आती और ग्लानी होती। अरे वाह, पाप करते समय कोई ग्लानी नहीं होती, लेकिन पाप प्रकट होने पर ग्लानी क्यों होती है? इसका मतलब है कि कहीं ना कोई हम चूक रहे हैं। भैया ऐसे निर्मलता नहीं हासिल होगी। दृष्टि जिसकी निर्मल हो गई है उसके जीवन में ये सारी चीजें अपने आप दिखाई देने लगेंगी। इनको कहीं से अडॉप्ट नहीं करना है, इनको कहीं से खोजने नहीं जाना कि ये मेरे भीतर आवे, महाराज ने ये कहा था। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे जीवन निर्मल होगा वैसे वैसे ये सारी चीजें आएंगी, जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे जीवन निर्मल होता। बोथ आर द साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ घटित होने वाली घटनाएं। और आखिरी बात, सादगी होना चाहिए। आज सादगी सिर्फ शब्द में रह गई है, जीवन में तो सादगी बहुत कम देखने में आती है। सादगी के मायने क्या है? कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, न पहनने ओढ़ने में, न खाने पीने में, न बोलने में, न चलने फिरने में, यहां तक कि धर्म करने में भी कोई दिखावा नहीं। लेकिन आज धर्म के क्षेत्र में भी जो जितना दिखावा कर सके, जो जितना आडंबर कर सके, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही सांसारिक क्षेत्रों में भी कि जो जितना दिखावा कर सके, जिसके पास जितनी सामग्री हो दिखाने लायक। प्रदर्शन के मायने मालूम क्या है? प्रदर्शन के मायने में है कि देखो जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास है तक नहीं है, जो कहा उस प्रदर्शन। और ये सबसे ज्यादा है, ये हमारी सादगी को नष्ट करता है। जब जब मेरे अंदर ये भाव आता है कि मैं मेरे पास जो है उसे दूसरे को दिखाऊं, और इसलिए दिखाऊं कि उसके पास नहीं है और मेरे पास है, इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो दृष्टि है, इस तरह का जो ज्ञान या आचरण है, जो दिखावे पर टिका हुआ है, भैया वो हमारे जीवन को निर्मल नहीं कर सकता। हमारे जीवन को तो हमारी सादगी ही निर्मलता की तरफ ले जा सकती है। एक उदाहरण दूं, और मेरे ख्याल से मुझे जितनी बात आपसे कहनी थी वो मैं कह चुका। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, कबीर दास के जीवन का उदाहरण है। खाने पीने को घर में तंगी होने लगी, इनको तो कबीर को तो भजन से फुर्सत नहीं थी, और भजन अकेले गाने से तो रोटी मिलती नहीं है, तो क्या किया जाए। एक दिन कंधा पकड़ के झंझकोर दिया था उनके, कि सुनो ऐसे नहीं चलने वाली गृहस्थी, जब नहीं चलती थी तो करी काय को थी गृहस्थी, और अगर करी है तो अपना दायित्व पूरा करो, घर में खाने को नहीं है। कबीरदास कहते, अरे पहले क्यों नहीं बताया घर में खाने को नहीं है? हां बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या सोचा? कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या है? मैंने तो ये सोचा है कि चोरी करूंगा। अरे वाह, ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो कर लेते हैं। देखो आप इनकी बातचीत सुनो, कबीर कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चोरी करना है कर लेते हैं। अब तो उनका बेटा भी सोचने लगा कि ये सब दिखावा था इनका, भजन वजन, देखो कितने जल्दी चोरी की कई सुराजी हो गए। और कहते हैं कि रात घिरी तो बेटे ने कहा कि चलो चोरी करने, उनने कहा चलो चले गए। तो कैसा कैसा करना पड़ेगा? अरे कैसा करना, हम जाएंगे सामान आमान बांध लेंगे, आप नीचे खड़े रहना, कोई आवे तो हमें आवाज दे देना। उनने कहा ठीक। अब वो बेटा भीतर जाता है बामुश्किल सेंध लगा करके, और सामान पोटली में बांध लेता है, पोटली बाहर ले आता है, कबीर से कहता है कि चलो हो गया, बंद गया सामान, सब बांध लिया। हाँ सब बांध दिया, अपने काम का है। हाँ अपने सब काम में आएगा, और उनका, उनके काम का तो नहीं था। हाँ इसमें क्या बात है, उनके काम का होगा तो होगा। अरे नहीं, और सुनो उनको बता दिया कि नहीं? उन्होंने ढूंढने का था तो हो गई चोरी। फिर तो बोले तुम हमें इसलिए लेके आए हो, हम नहीं समझते थे कि ऐसी चोरी होती, भैया सवेरे से जागेंगे ना परेशान होंगे, बता तो आओ कम से कम कि हम तुम्हें ऑनलाइन जा रहे। ये तो एक घटना है, ये तो सरलता और सादगी की घटना है। जो सरल और सादगी से जीता है उसके जीवन में मलिनताएं उसे घेर नहीं सकती, वो चोरी नहीं कर सकता। ऐसे कहीं की जाती है चोरी? और हम तो खबर भी नहीं लगने देते, दुकान पर बैठे बैठे ग्राहक को जितना बनता है उतना उसके साथ चीट करते हैं, और हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं या कि हम बहुत पढ़े हैं। तो कितने ही बड़े हो और कितने ही पढ़े हो, अभी तो जमीन से जरा भी ऊपर नहीं उठे हो, अभी तो जमीन में ही पड़े हो। अभी हमें विचार करना पड़ेगा इस बात पे। आज ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब होती चली जा रही हैं, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान तो इस तरफ है कि मेरा बेटा होशियार बने, चतुर बने, दुनियादार बने, खूब पढ़े और बेईमानी करे, और क्या। तब तो 5 साल के बेटे को पूना भेज रहे हैं पढ़ने के। अभी जिसने कोई संस्कार नहीं सीखा है घर में, कोई संस्कार नहीं है उसको, अपने धर्म का काखागा नहीं मालूम, उसको हम दुनियादार बनाने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने से दूर विदेश भेज रहे हैं कि वो पढ़ लिख के लौटेगा। पढ़ लिख के नहीं लौटेगा, चतुर और बेईमान बन के लौटेगा। आदमी है, आदमी से नीचे उतर के वापस लौटेगा। बनाना चाहिए था आदमी, डॉक्टर बन जाएगा बाद में, इंजीनियर बन जाएगा बाद में। अगर आदमी नहीं बना तो ये सब बन जाने के बाद भी कोई मायने नहीं हुआ। इसलिए भैया, अगर कोई बात मेरी बहुत कड़ी लगी हो तो क्षमा करिएगा, पर करना तो एक ना एक दिन हमको यही पड़ेगा। हमको अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, निर्मल बनाना है, तो ये ऐसी सरलता, ऐसी सादगी, ऐसी स्पष्टता और ऐसी उन्मुक्तता और ऐसी ईमानदारी हमारे भीतर आए जो कि हमारे जीवन को निर्मल बनाए और हमारा जीवन जीना सार्थक हो, इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन निर्मल हो, अच्छा बने, हम अपने उस जो निर्मल स्वभाव है उसको प्राप्त कर सकें, इसी भावना के साथ अपन आज फिर आपके साथ बैठे हैं। तो सब मिलकर के नमोकार करते हैं इसी भावना से कि हमारे जीवन में थोड़ी देर को ही सही, जितनी देर इस हॉल में बैठे हैं उतनी देर को ही निर्मलता आ जाए, इतना ही ठीक है। सब भूल जाएं दुनियादारी और थोड़ी देर को उसी में लीन होकर के और अपने निर्मलता का एहसास कर सकें, इसी भावना के साथ। नमो अरिहंतानम्, ओम नमो सिद्धार्थम्।
नमो आयणियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौसाहूनम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवलीपण्णतोधम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा पण्णतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं सिद्धे शरणं पवज्यामि साहूशरणं पवज्यामि पण्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि धम्मं शरणं पवज्यामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पाप पर पास वेखो मनुष्य बखानी है जान वेखो बंद विद्वान वेखो सर विद्वान वेखो परम प्रमाणी है अनुभव तार वेखो जीवन के जता को काऊ न सतार को भव्य और आनी है कार वे को कार के उतार वे को सुख विस्तार वे को नहीं दिन वाणी है जा वाणी के ज्ञान से नमो सदा देते हुंडो हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन ओम नमो
जगलु दसान जिनवाणी माता की जय।
बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनि 108 श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि 108 श्री भव्य सागर जी महाराज की। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का सकल जैन समाज गुना हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों की भोजन सुविधा महावीर परिसर में। मुनिश्री के प्रवचनों की कैसेट्स उपलब्ध है। Thank you.